अरे ट्रक आ गया है, जल्दी करें।
आ गया?
हाँ
नीमा कहाँ चला गया? मैंने कहा था ना कि जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं आएंगे और सूरत हाल वाजे नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे कहीं।
अबू ने कल खुद ही ट्रक वाले से कह दिया था।
लेकिन मैंने तुम लोगों से कहा था कि फोन करके मना कर दो, कहा था ना?
अम्मी जान, नहीं हो सकता था, उसका पैसा बहरहाल देना था।
अरे बेटी, मुझे उल्लू मत बनाओ।
भाई आप लोग अभी तक खड़े हैं बाहर, ये कार्टन्स हटाओ, चलने में रुकावट होगी।
अम्मी घर से सामान ले जाने की इजाजत नहीं दे रही।
क्या मतलब है, ट्रक दरवाजे पर खड़ा है?
बिलम वजह है, जाके कहो चला जाए। मैंने कल रात कहा था ना कि हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे।
अम्मी जान, अब्बू ने कह दिया ना, अगर कुछ होने वाला होता या कोई खबर होती तो वो इत्तला दे देते, नहीं मान रही हैं। हेलो अब्बू, अम्मी आपसे बात करना चाहते हैं।
जी झूठ बोल रहे हैं।
अरे भाई तुम क्या कह रही हो, मैं उस कंपनी में जाऊं और हर एक से कह दूं कि 200 मिलियन तुम्हारे मेरे पास हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? असल बात कानून की है, जो जानता है कि मेरे पास हैं ये पैसे, जब भी जरूरत पड़ेगी मुझसे ले लेंगे। इस मुल्क में कानून का किसी पर बस चले ना चले, मुझ बेचारे पर चलता है।
मुझे कानून से कोई सरोकार नहीं है। बहुत से बदकिस्मतों ने अपनी उम्र भर की पूंजी इन फ्लैटों में लगा रखी है, उनमें से चंद लोगों में भी ये पैसा तकसीम होगा तो उनके लिए बहुत होगा।
मेरी बेगम तैयबा बात सुनो, अगर मैं उस कंपनी में जाकर किसी शख्स के हाथ में 1000 तुमान भी पकड़ा दूंगा तो दूसरे लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे, समझेंगे मैं ही अफसर हूँ, मार डालेंगे।
तुम इस पैसे को वापस न करने के लिए बहाने तराश रहे हो।
मेरी जान तैयबा सुनो मेरी बात।
तुम फिलहाल इस घर में सामान ले जाने दो, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा तो आराम से बैठकर बात करेंगे।
मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
अरे सुनो तो, नहीं हो सकता ना, हमने उस घर को छोड़ दिया है, वो किराए पर चढ़ गया है, अब उसमें किराएदार आएगा।
ठीक है, यहाँ नहीं रहूंगी लेकिन वहाँ भी नहीं जाऊंगी।
तो कहाँ जाओगी?
वो मैं खुद जानती हूँ।
हेलो
हेलो नीमा बेटे,
देखो रात तक सामान ले जाओ, काम तमाम कर दो।
अम्मी को क्या करें, वो तो न जाने की जिद कर रही है।
नहीं तुम लोग सामान ले जाओ, वो भी आ जाएगी। वो कहाँ जाएगी, बस उसके साथ बहस ना करो, ठीक है बेटा?
जी अच्छा,
खुदा हाफिज।
कुछ नहीं, ट्रक दरवाजे पर है, सामान ले जाने की तैयारी करो।
हाँ इसी तरह घुमाओ घुमाओ, हाँ बिल्कुल इसी तरह सीधे जाओ।
ये लो ये लो ये लो।
डीजी साहब आप क्यों, अरे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे।
अब्बू को देखो कैसे मजदूर लाए।
क्या कह रहे हो, ये कौन है जानते हो? कौन था? इसका गन्ने का फॉर्म है आवाज में, ये बेचारे यहाँ।
तुम उसको जानते हो?
अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला।
ये भी ले चाचा,
तो ये
जाकर कोई और काम ढूंढ ले, हम क्यों उसका खमियाजा भुगते।
अरे क्या हुआ, दो चीजें उठाकर मर तो नहीं गए, और फिर ये वर्जिश।
नीमा इनको क्या करूं?
उनको गाड़ी में रखेंगे ना।
तुम दिवालियेपन की तरफ जा रहे हो।
देखो मैं प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा हूँ।
अच्छा तो क्या वर्कशॉप की कामयाबी या नाकामी तुम्हारे अपने हाथ में है?
जो जी चाहे कह लो।
साइड हो जाओ, मुझे दरवाजा बंद।
ठीक है अच्छा, मैं ब्लैक मार्केट में नहीं जाता। हाँ खत्म हो गया।
हमारे साथ कौन आएगा?
मैं आता हूँ।
एड्रेस है तुम्हारे पास?
हाँ है।
देखो मैं बताने वाला था कि मैं अपने पैसे गोल्ड और डॉलर में नहीं फंसाऊंगा।
किन ख्यालों में तुम, अल्लाह तुम्हें शिफा दे।
हम भी अभी आते हैं।
ठीक है।
अम्मी क्या कर रही हैं, आएंगी या नहीं?
नहीं नहीं आएंगी।
अच्छा तो कहाँ जाएंगी?
पता नहीं, जहाँ जाएंगी मैं भी साथ जाऊंगी, आप लोग जाएं, देर ना हो जाए।
अम्मी बदमजगी ना करें, एक साथ नए घर चलेंगे ना।
मैंने तुम्हारे अब्बू से एक काम की ख्वाहिश की है, जब तक करेंगे नहीं मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, आप तशरीफ ले जाएं।
अरे अम्मी कहाँ? अरे अम्मी कहाँ गई?
कुछ नहीं रूट गई।
आप लोग साथ चले जाएं, मैं भी अम्मी के पीछे जाती हूँ। अम्मी अम्मी जान प्लीज रुकें। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप?
मैं तुम्हारे अब्बू की कंपनी जाके देखूंगी कि वहाँ हो क्या रहा है, बहरहाल कोई तो मिलेगा जो मेरी बातों का जवाब दे।
प्लीज ये काम ना करें, मेरे सर की कसम ये काम ना करें।
बहारे उम्र भर हमने हलाल की रोटी खाई है, मैं नहीं चाहती कि उम्र के इस हिस्से में हम एक मनहूस वर्कशॉप और एक घर के लिए अपने ईमान को बेच दें।
नीमा अम्मी कंपनी जा रही हैं।
तुम किसे से मिस कर रही हो?
मैं किसी को भी नहीं।
मामला बिगड़ गया।
क्या हुआ है?
अम्मी अब्बू की कंपनी जा रही है, पैसे का मामला उनको बताने।
आखिर अब्बू क्यों ऐसा कर रहे हैं?
अब्बू की कौन सी गलती है, ये अम्मी है जो सब कुछ बिगाड़ रही है। बस खुदा करे वो जल्दी वहां पहुंच जाए।
नीमा पुलिस।
लीजिए जनाब, रोटी खाइए।
नहीं शुक्रिया,
गर्म गर्म है, तगल्लुफ नहीं कीजिए।
खुदा बरकत दे।
शुक्रिया।
हेलो सलाम। हेलो 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 बेटा। हेलो सलाम बेटा, कट गया था क्या? तुमने क्यों जाने दिया?
अम्मी जान आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी खातिर, नीमा की खातिर, समाना की खातिर ये बात जहन से निकाल दे।
तुम नहीं समझ रही हो, मुझे तुम ही लोगों का ख्याल।
ये ख्याल रखने का कौन सा तरीका है जो सबकी जिंदगी को दरहम बरहम कर रही है? जनाब हम यहीं उतर जाएंगे।
किस लिए यहाँ रुकने को कहा है?
अम्मी जान उधर देखें, जरा सोचें, आपके इन लोगों से बात करने का क्या फायदा होगा? ये लोग एक दो आदमी तो है नहीं।
ये पैसा मशकूक है, ये बात समझो।
अम्मी इसके अंजाम के बारे में सोचें, इतना खुद गर्ज ना बने। अम्मी अम्मी
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इधर आओ, आओ बैठकर बात करते हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ?
मैं जाकर वो काम करना चाहती हूँ जिसकी तुम में जुर्रत नहीं है।
भाई जुर्रत किस बात की? देखो मैंने सारी बात पुलिस से कह दी है, मैंने सब कुछ बता दिया है। जब भी कहेंगे पैसे वापस लाओ सर आंखों पर, मैं वापस कर दूंगा। अब चलो घर चलें।
मुझे पुलिस से कोई काम नहीं है। मैं अगर उस घर में गई तो इन बदबख्त लोगों की शक्लें मेरे सामने।
ये लोग उतने बदकिस्मत और बेचारे नहीं जितने तुम समझती हो। कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं लेकिन मिलाएं अगर कुल तो जाके 50-60 अरब बनते हैं। वो 2 कौड़ियां जो हमने ली हैं वो आटे में नमक के बराबर, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है।
वो 2 कौड़ियां शर है, मुसीबत है, समझो।
समझो कि शर है मुसीबत है? कर्जा लेना शर है क्या? अपने को खानदान की खातिर जोखिम में डालना मुसीबत है?
तुम बच्चों की खातिर सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, खुदा को, जमीर को और मुझे भी।
क्या खुदा और पैगंबर को सिर्फ आप मानती हैं? हम में से कोई भी खुदा को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता। हम बेजमीर हैं, हम जो अपनी फैमिली की खातिर काम करते हैं, जहमत उठाते हैं, कुत्ते की तरह भागते हैं, हमारा कोई जमीर नहीं।
मनहूस पैसे की खातिर सब बातों की तौजीह कर रहे हो।
मैं तौजीह पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों की खातिर मेहनत कर रहा हूँ, तकलीफ उठाता हूँ। बाहर है, चलो मेरी बेटी तुम घर चली जाओ, मैं और तुम्हारी माँ बाद में आएंगे।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
तुम जाओ। देखो मैं 2 बातें तुमसे करना चाहता हूँ, सुनो। देखो बात तो सुनो मेरी। तुमने वाकई क्या सोचा है? तुम समझती हो मेरा मसला सिर्फ यही पैसा है, यही? क्या तुमने अब तक इस बारे में सोचा है कि मुमकिन है बच्चे हमें छोड़कर चले जाएं?
कहाँ जाएंगे?
कहाँ चले जाएं? नीमा कहाँ जा रहा था तुम्हें क्या पता? हम किस मुसीबत से उसको एयरपोर्ट से घर वापस लाए थे, कभी सोचा यही नीमा दोबारा छोड़कर चला जाएगा? मेरे खुदा, मेरे मुंह में खाक। कभी तुमने ये सोचा कि बाहरे उस दिन सुबह जो गई थी पहाड़ पर गई थी या किसी और जगह गई थी?
और कहीं? क्या मतलब है कि और कहीं?
ठहरो, ये लो पढ़ो।
ये क्या है?
पढ़ो पढ़ो। तुम्हें याद है उस दिन सुबह जब बहारे ने देर की और जब आई तो कहा कि पहाड़ पर गई थी, जब वो घर आई तो अपने कमरे में गई और ये खत उसको मिला, उसको पढ़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मैंने बाद में जाकर टुकड़ों को जमा किया, उनको आपस में जोड़ दिया। तैयबा, इस वक्त हमारे खानदान को इस पैसे ने जोड़ रखा है, अपनी जगह कायम रखा है। मैंने भी ये पैसे चुराए तो नहीं है, मैंने कर्जा लिया है, मैंने अपने खानदान के लिए कर्जा लिया है। काम करूंगा और वापस कर दूंगा। तुम बेहतर है लोगों की फिक्र करने के बजाय अपने घर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो।
ये क्या है, इस पिज्जा की क्वालिटी उससे कम है जो हमारे पुराने घर के सामने बेचते थे, लेकिन कीमत इससे ज्यादा ली है।
अरे उसको ऊंची जगह दुकान का किराया भी तो निकालना है ना, इसीलिए मटेरियल अच्छा होगा, कचरा तो नहीं देंगे ना।
और आलुओं के बारे में क्या ख्याल है, इसने आलुओं के भी 200-300 तुम्हारे ज्यादा लिए हैं।
अरे समाना, अब इतनी भी कंजूस मत बनो, यहाँ रहने वाले लोग 200-300 तुम्हारे के बारे में नहीं सोचते। और हाँ अबू, अब जब हमने घर तब्दील किया है और मेरे काम की जगह भी यहाँ से करीब है, तो आपको मेरे लिए गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं।
संजीदगी से कह रही हूँ, यानी तुम्हें यकीन है?
जी मुझे यकीन है।
जानती हो बेटा, जब वर्कशॉप चल पड़ेगी और मुनाफा देना शुरू कर देगी तो इसमें सबका हिस्सा है, उसके मुनाफे का पैसा हर महीने तुम्हारे अकाउंट्स में जाएगा, फिर तुम जो चाहो खरीद सकती हो, गाड़ी बल्कि तुम फ्लैट खरीद सकती हो।
जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि अब गाड़ी के पैसे से हम कुछ घरेलू सामान खरीदें।
तो ये क्या है फिर, हमारे पास घर का सामान है मेरी बेटी?
है तो सही, लेकिन स्टाइलिश नहीं है।
बस करो, इस वक्त हमारा मसला घर और घर का सामान नहीं है, इस वर्कशॉप को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, उसको चलना चाहिए। पूरा पैसा तुम्हारा नहीं है।
कौन सा पूरा पैसा, मेरी अपनी गाड़ी का पैसा है, कसूर मेरा अपना है कि अपने पैसे को इस घर पर खर्च कर रही हूँ।
देखो बेटी, आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमने नया घर लिया है, दूसरे कदम पर हम उसके लिए सामान लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब्र करो। देखो अपनी माँ से कहो इधर आए।
अम्मी जान आए ना, ठंडा ठंडा हो रहा है।
मुझे भूख नहीं है।
तैयबा बेगम, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे, सबको तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें गमगीन नहीं देखना चाहते। आओ आराम से दस्तरखान पर बैठकर खाना खाओ।
बेकार की बातें ना करें, इस घर में हर एक को अपने काम की फिक्र है, वरना हमारे हालात ये ना होते। नीमा देखो कौन आए।
जरूर चौकीदार होगा, दोपहर के वक्त उसको देखा था।
हमारे आते ही उसे पैसे की जरूरत होगी।
नहीं मेरा नहीं ख्याल, अच्छे आदमी है।
अब्बू अब्बू,
क्या है, चौकीदार है, पैसे चाहिए उसको?
नहीं रजा साहब है।
कौन?
रजा साहब।
इसको यहाँ का पता कैसे मिला? देखो चंद मिनट दरवाजा मत खोलो, वो खुद चला जाएगा।
वो
क्या, हम उसके मकरूज हैं
क्या? कहे
देखो ऊपर जाकर चुपके से देखो कि
अब आप लोग ऐसे ठहरो 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 ठहरो,
अकेला या किसी और के साथ आए?
दरवाजा खोलें, उनको ऊपर आने दें।
ना नहीं नहीं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ हैं।
क्यों,
किस लिए? इसलिए कि मुझे पता है कितना ढीठ आदमी है, वो यहाँ आएगा हमारी पोजीशन को देखेगा, फिर जगह जाकर ढिंडोरा पीटेगा, हमारे लिए मसला खड़ा करेगा।
क्या हमने चोरी की है?
नहीं।
रजा साहब जी जी आइए, ऊपर आइए आइए। नीमा जाके दरवाजा खोलो।
ये तुमने क्या किया, ऊपर आ भी गया तो कहो मैं घर पर नहीं हूँ।
अरे बात क्या है? कोई गड़बड़ कर रखी है क्या?
किसने? मैंने? नहीं। तुम दोनों यहां क्यों खड़ी हो? हाँ, जाओ अपने कमरे में।
माफ कीजिए मुर्तजा भाई, मैं खाली हाथ आया हूँ। मैं मिठाई की उस दुकान पर गया था जो आपकी गली के नुक्कड़ पर वाके है। भाई बहुत महंगा दे रहा है, मैंने कहीं पर भी इतनी महंगाई नहीं देखी, फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं।
तुमने यहाँ का पता किससे लिया?
अरे भाई, जिस तरह आपने पहले वाले मकान का एड्रेस नहीं दिया था और मैंने ढूंढ निकाला था, इसी तरह इसका भी।
अजीब
मुर्तजा, क्या महल्ला ढूंढ निकाला है?
बेगैरत,
क्या महल्ला है, लाजवाब है। ऊपर से ये बिल्डिंग, दो लिफ्टें, दो चौकीदार, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। सही सही बताओ, यहाँ तुमने ये कितने का खरीदा है?
मैंने खरीदी थोड़ी है।
हाँ शाबाश, अब तुमने सीख लिया कि इंसान को पैसा घर पर नहीं लगाना चाहिए, उसे कारोबार में लगाना चाहिए। लेकिन वाकई में शानदार काम हुआ है। मार्बल, मख्फी रोशनी और ये महंगा आतिशदान, नक्शो निगार और सारी चीजें वाकई शानदार हैं। मेरे ख्याल में ये 200 मीटर से ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि 4 BHK का है। होना भी चाहिए ना। माशाल्लाह, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हर एक को अलग बेडरूम चाहिए।
बहुत शुक्रिया बेटी, तुम जाओ।
बहुत बहुत मेहरबानी, आओ बैठो बेटी। मुर्तजा, बच्चों से कहो आकर बैठ जाए, बड़ा अरसा हुआ एक दूसरे को देखा नहीं है।
देखो, चूंकि हम अभी भी शिफ्ट हुए हैं, ये लोग मसरूफ हैं। जाओ बेटी अपना काम करो।
माफ कीजिए, मैं चलती हूँ।
जाओ बेटी अपना काम करो। बहुत शुक्रिया।
पियो।
थैंक यू।
रजा, तुम ये चीजें मुझे बताने आए हो?
देखो, हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम इन बातों से कहीं ज्यादा समझदार हो। देखो, इस चाय को यहीं छोड़ो, जब तक ये लोग मसरूफ हैं, एक मिनट के लिए उठो। मुर्तजा देखो, तुमने आकर शहर के पहुंच इलाके में घर ले लिया, तुम्हें मुबारक हो। बड़ी रकम जेब में डाली, वो भी तुम्हें मुबारक हो। तुमने पैसा खा लिया, वो भी तुम्हें मुबारक हो। देखो, तुमने फ्रॉड किया है, तुम्हें मुबारक हो। तुमने कमीशन लिया, तुम्हें मुबारक।
मैंने कब फ्रॉड किया है? मैंने फ्रॉड नहीं किया है, कमीशन नहीं खाया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
मुर्तजा, तुम क्या समझते हो कि मैं जंगल से आया हूँ? मैं बच्चा हूँ। याद है इससे पहले तुमने मुझसे क्या कहा था?
क्या कहा था?
तुमने कहा था, रजा भाई, काश वो 100 मिलियन मुझे देते तो मैं तुम्हारे लिए घर बना देता। क्या मतलब था? इस बात का मतलब है कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम उनके राजदार हो।
क्या बकवास कर
भाई साहब, इन बातों को छोड़ो। मुर्तजा, तुम मेरी बीवी के इस 100 मिलियन का बंदोबस्त करो ताकि वो मेरी जान छोड़ दे। मैं आपकी हर तरह की चाकरी करने को तैयार हूँ। अगर 3-4 चेकों की जरूरत हो तो मैं खुद इसका बंदोबस्त कर दूंगा। दूसरी ये कि इस वक्त आपका कारोबार उरूज पर है, आप मसरूफ हैं, आपको एक शख्स की जरूरत है जो तुम्हारे कामों को निपटाए। तो तुम्हारे इस खालाजाद भाई से ज्यादा अमानतदार कौन हो सकता है? मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे काम निपटाऊंगा। ना नहीं कहना, ओके? ना नहीं कहना,
ठीक है?
मुझे इत्तला जरूर देना, मुझे बाकी कुछ नहीं सुनना, मुझे इत्तला जरूर देना, मुझे इंतजार रहेगा।
ठीक, क्या मैं तुम्हें खबर
दूं? बस मोहतरमा, प्लीज आप मुर्तजा भाई से हमारी सिफारिश कर दें।
ठीक है, जरूर।
शुक्रिया, जरूर। अगर आपकी इजाजत हो।
बेगम को सलाम कहिएगा, जरूर कहिएगा।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। आपसे उसे क्या काम था?
कुछ नहीं, अपने रिश्तेदार होने के नाते मिलने आया था।
पैसा मांग रहा था ना? आप तो कह रहे थे कि उसके लिए एक फ्लैट लिया है।
हाँ ना, ये भी दूसरों की तरह बेचारा।
देखिए मुर्तजा, खुदा आपको दिखा रहा है, अभी हमने इस घर में अपने पैर भी नहीं जमाए हैं। आप कम से कम इस बेचारे का पैसा तो दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया आपने।
नहीं, मैं कंपनी में इसके लिए कोशिश करूंगा, इत्मीनान रखो। आखिर ये हमारा रिश्तेदार है।
अबू जान, बुरा ना माने, मैंने हजार बार आपसे कहा कि इससे रابطہ ना रखें। ये आपके रिश्तेदार भी अजीब हैं, बिल्कुल घर के सामान की तरह।
माशाल्लाह, इस घर में सबके कान तेज हैं।
अच्छा, ये इंजीनियर कब आएगा?
आज दोपहर तक पहुंच जाएगा।
यानी हम इस हफ्ते से इस मशीन को चला लेंगे?
क्यों नहीं, शायद इससे भी पहले।
इस कमबख्त ने भी लोगों के पैसे हड़प कर लिए हैं, तमाम मुसीबतें हमारे गले पड़ गईं। देखो हमें कर्जे के पैसे जल्द वापस करना होगा।
परेशान ना हो, वो भी वापस कर देंगे।
क्या बात है, फिर मुंह बनाया? ये सामान मैंने अपने दोस्त से किस्तों पर लिया है, पैसे भी थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, घर भी कर्जे के पैसे से लिया है, बिल्कुल जायज पैसा है।
आपको यकीन है?
तुम्हारे लिए साबित करके दिखाऊंगा।
ठीक है, उठो लड़के,
इसको हवालात में बंद करो।
जी हुजूर।
अच्छा तो लिख दिया?
जी, अभी खत्म होने वाला है।
हम इस कंपनी के केस पर पूरी यकसुई से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको भी अपना पैसा मिल जाएगा।
आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं?
जी, लेकिन आपको कुछ नहीं बता सकते।
माफ कीजिए, गुस्ताखी माफ, बेजा मुदाखलत ना हो। क्या आप अफशार साहब के करीबी लोगों की भी निगरानी कर रहे हैं? आपको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द के कुछ लोग भी इस मामले में मुलव्विस हों।
आपका मतलब क्या है?
मेरा कोई मतलब नहीं था, सोचा शायद कंपनी में कोई उसका शरीक होगा, क्योंकि ऐसे फ्रॉड अकेले नहीं किए जा सकते, जरूर कोई मुआविन, साथी, कोई शरीक, दोस्त, कोई ना कोई रहा होगा।
ऐसा लगता है कि आप इन मामलों में काफी माहिर हैं।
बहुत शुक्रिया। आपको पता है, मसलन अभी कुछ हफ्ते पहले तक कंपनी के बाज लोगों के पास हत्ता कि एक छोटा सा फ्लैट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब शहर के पौश इलाके में लग्जरी और शानदार बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लिया है और क्या शानदार जिंदगी कर रहे।
अरे अच्छा, तो उनका नाम लिखो, बताओ।
जनाब, मैं तो उनके नाम नहीं लिख सकता, मैंने भी इधर उधर से ही सुना है। महज आपकी इत्तला के लिए अर्ज किया, ताकि आपका ध्यान रहे और कंपनी के लोगों पर नजर रखें।
देखिए, हम अपना काम जानते हैं जनाब, इस वक्त भी हम अफशार साहब की जायदाद को मालूम और जब्त करने में लगे हुए हैं। आप इत्मीनान रखें, कोई भी चीज पुलिस की नजरों से छुपी नहीं रह सकती।
माफ कीजिएगा जनाब, अगर अफशार साहब ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी और सरमाया किसी और के नाम कर दिया हो तो इस वक्त कौन जिम्मेदार होगा?
तो फिर उस वक्त जज साहब फैसला करेंगे। और अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो अनजान बनने की कोशिश मत करो, बगैर लगी लिपटी सब को जो जानते हो लिख दो।
मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी।
अच्छा, तो फिर अपनी चाय पियो।
मुर्तजा साहब, अगर अल्लाह ने मदद की तो बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू होगा।
खुदा करे अच्छे आर्डर भी मिले, ताकि काम आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े।
ठीक है।
अब्बू, पता है हमारे काम का मसला क्या है? हमारा खाम माल इम्पोर्टेड है, इसीलिए काम में रुकावट पैदा हो रही है।
अच्छा, तो पहले से इसका पता नहीं था?
क्यों नहीं मालूम था, लेकिन चंद दिनों से कहा जा रहा है कि सरकारी टैरिफ को ऊपर ले जा रहे हैं। पूरी मार्केट सरगर्दा है, हर रोज एक नई बात की जाती है।
नीमा देखो, ये साथ वाले वर्कशॉप का मालिक क्या करता है, तुम लोग भी वैसा ही करो, होशियारी से काम करना पड़ेगा ना।
मैंने और जहान ने मालूमात हासिल की हैं, इब्तदाई 2-3 महीनों के लिए खाम माल खरीद सकते हैं। कैसा लगा आइडिया?
किस पैसे से?
चेक पर खरीदेंगे।
चेक से? चेक की तो बात ही ना करो, समझे? अभी से कर्ज तले दब जाना चाहते हो? अच्छी चीज तैयार करो और मार्केट में भेजो, जब खरीदार पैसा देगा तो उसी पैसे से खाम माल खरीदो, समझे?
लेकिन आखिर
देखो, चेक का नाम मत लो, जाओ।
जी ठीक है।
मतलब अफशार की तमाम जायदाद में से सिर्फ ये गाड़ी बची है?
जी।
और फिर ये एक्सीडेंट का मामला क्या था?
उसमें मौत हो गई और राहगीर को मार दिया था।
अच्छा,
लेकिन वो एक्सीडेंट अफशार ने नहीं किया था।
फिर किसने मारी?
मुर्तजा अमीरी नाम का एक शख्स है, उसने किया था।
मुर्तजा अमीरी?
الله اکبر بسم الله و بالله
الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد السلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و علی
آل محمد. معاف کیجیے، ایک استخارہ دیکھ لیں ذرا.
جی ضرور. بسم الله الرحمن الرحیم.
کیا ہوا مولانا صاحب؟
اس کو چھوڑ دیں، اس کام میں خیر نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟
اس کی دلیل اور وجہ کا مجھے علم نہیں ہے.
معاف کیجیے، ہو سکتا ہے ایک بار اور کر لیں، شاید صفا مسئلہ ادھر ادھر ہو گیا ہو.
میرے عزیز برادر، اصل وہی پہلے والا استخارہ ہے.
یعنی کوئی اور راستہ موجود نہیں؟
نہیں میرے بھائی.
پھر معاف کیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ سے مشورہ کر سکتا ہوں؟
ہاں بتائیے.
معاف کیجئے مولانا صاحب.
بتائیے.
میں نے قرضہ لیا ہے، ٹھیک
جی،
لیکن میری بیوی مخالف ہے.
جی
مخالفت
جی
کر رہی ہیں
جی.
اس کا حکم کیا ہے؟
اگر وہ شوہر کے حکم کی نافرمانی کرے تو مسئلہ ہے، لیکن زیادہ گہرائی سے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے حالات کو دیکھنا بہت ضروری ہے.
لیکن مولانا صاحب، یقین کریں آپ بہت اچھے آدمی
ذرا ہیں. نمازی
دراصل قسمت میرا ساتھ ہی راستے میں اس مچھلی میں نماز پڑھنے آیا.
شکریہ آپ کا.
یعنی شوہر کے حکم کی نافرمانی غلط ہے؟
جی بالکل صحیح.
بہت شکریہ آپ کا.
لیکن جیسا کہ میں نے کہا، حالات کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے. کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے.
جی مطلب یہ کہ حالات کا جائزہ لیا جائے. ہیں
جی جی.
کیا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟
جی.
ہاں تو ذرا سنیے.
اچھا سنو، چلو چیک لے لیتے ہیں، ابو کو بعد بتائیں گے.
اچھا کب سے تمہارے ابو بن گئے وہ؟
تم خود کہتے تھے کہ ہم دونوں بھائی ہیں. اب ذرا میری اس بات پہ خوب سوچو تم.
مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں ابو ناراض نہ ہو جائیں.
کیسی ناراضگی، اس وقت سب مارکیٹ میں چیکوں پر ہی کام کر رہے ہیں،
اور پھر یہ کیا بات ہوئی کہ تم ایک کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو اور تمہارے پاس ایک چیک بک اور بینک اکاؤنٹ بھی نہ ہو؟
اور اگر ہم چیک کی رقم نہ بھر پائے تو؟
اگر تم اسی ابتدا میں ہی ڈرنے لگے تو ہم تو مار کھا جائیں گے میرے دوست۔ رسک کرنا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ ہم پارٹنر ہیں۔
ٹھیک ہے، مجھے اس بارے میں سوچنے دو، لیکن لگتا ہے اس بار تم صحیح کہہ رہے ہو۔
اب جب تم ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن گئے ہو تو اپنا حولیہ بھی ذرا انسانوں والا بنانا ہوگا، اس طرح ٹھیک نہیں۔
مجھ میں کیا کمی ہے؟
بھائی یہ کیسا جوتا ہے، ایک اچھا جوتا خرید لو، لباس ڈائریکٹر جیسا پہنو، موبائل فون اور گاڑی بھی بدلو، البتہ جب کام چلنے لگے تب۔
آج استثنائی طور پر تم سب کچھ صحیح کہہ رہے ہو۔
آج تم استثنائی طور پر تم میری باتوں کو سمجھ رہے ہو۔
مولانا صاحب میری بات میں بذات خود ایک پوائنٹ ہے۔
میرے بھائی برادر عزیز، میری بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی، آپ کی بیوی ٹھیک کہتی ہیں، آپ کے پیسے میں مسئلہ ہے۔
لیکن بہرحال قرضہ ہے۔
اگر آپ اس پیسے کو خرچ کرنے پر اتنا اصرار کر رہے ہیں تو خرچ کیجئے، خدا کی تائید کس لیے لینا چاہتے ہیں؟
اچھا تو صحیح نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ۔
لیکن مولانا صاحب معاف کیجئے، معذرت چاہتا ہوں، ایک اور نقطہ بھی، وقت ہے آپ کے پاس؟
میرے بھائی ماشاءاللہ سے آپ ایک گھنٹے سے لگاتار باتیں کر رہے ہیں، اب کرنے کو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔
کیوں نہیں مولانا صاحب، رہ گئی ہے۔
مثلاً کیا بتائیے؟
ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، معاملے کے پس منظر میں جو اصرار ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہاں دیکھا
میرے بھائی، دعا کرے خدا ہم سب کی ہدایت کرے۔
آپ ناراض کیوں رہے مولانا صاحب؟ اچھا ایک منٹ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ طیبہ طیبہ ارے بابا، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
تم یہاں ہو؟ کہاں کہاں میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ بڑے گھر کی یہی تو مصیبت ہے کہ انسان اپنی بیوی کو بھی گم کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال رکو 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 رکو، میری قسم رکو، یہ تمہارے جمال یوسف کی یہاں طبیعت ٹھیک ہے؟ جو شہر کا اونچا علاقہ اور آب و ہوا اچھی، یا وہاں دھوئے اور ڈیزل کے درمیان؟
وہاں دیکھ نہیں رہے ہو، بیمار ہو گئے۔
لیکن میں قربان، تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے، اپنے ہاتھ دھو لو، میں لوبیا پلاؤ لایا ہوں۔
یہ ان لوگوں کے نام اور ایڈریس ہیں جن سے تمہیں بات کرنی ہے، صرف خیال رکھنا منہ بمنہ وہی سوالات پوچھنا ہے جو میں نے تمہیں بتائے ہیں۔
صرف مسز فرحمند مجھے پریشانی کے ان سے تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ
پریشان نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ تم کہو میرے ساتھ کام کرتی ہو۔ صرف دھیان رکھو، ان سوالات کے جواب بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ عدالت میں ہم ان کا حوالہ دے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ضرور، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔
سامانہ، اگر تم اچھی وکیل بننا چاہتی ہو تو تمہیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ اتنا لیکن مت کرو۔
جی اچھا ٹھیک ہے،
ان سے بات کرنے کے بعد فوراً مجھے اطلاع دو، تاکہ اگر کوئی بات ہو تو میں تمہیں کہوں کہ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔
جی ضرور، اب میں چلتی ہوں۔ مسز فرحمند، میں ایک مسئلے کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی، البتہ اگر اس وقت آپ مصروف ہیں تو پھر کسی اور ٹائم میں آپ سے بات کر لوں گی، ٹھیک ہے؟
نہیں کہوں، سن رہی ہوں۔
جی، کسی نے اپنے مالک سے 150 ملین قرضہ لیا تھا، بعد میں اس کا مالک فراڈی نکلا اور اس وقت وہ مفرور ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ قانون اس 150 ملین تمان کو واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟
میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں، ابھی وکیل نہیں بنی اور کیس لڑ رہی ہو۔
نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں صرف کچھ معلومات حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔
کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ پیسہ قرضے کا ہے؟
پتہ نہیں، لیکن میرے خیال میں ہونا چاہیے۔
بہرحال اگر کوئی ثبوت ہے تو کوئی اس سے پیسہ واپس نہیں لے سکتا۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
سمانہ، یہ شخص جس نے 150 ملین قرضہ لیا ہے، اس کا اس فراڈ سے کیا تعلق تھا؟
ملازم اور باس کی حد تک۔
رقم کو واپس کرنے کے لیے کس چیز کی ضمانت دی گئی ہے؟ چیک، بانڈ یا ڈاکیومینٹس کی؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟
نہیں، مجھے نہیں معلوم۔
سمانا، تم سمجھتی ہو اس طریقے سے وکالت کر سکو گی؟ تمہیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جو ضمانت دی گئی ہے اگر وہ 150 ملین کے برابر ہے تو اس میں کوئی مشکوک بات نہیں پائی جاتی، لیکن اگر معاملہ مختلف ہو تو یہ پتا کرنا پڑے گا کہ باس نے آخر ملازم کو 150 ملین کا قرضہ کیوں دیا ہے۔ یہ بتاؤ، یہ کیس کس کا ہے؟
بعد میں بتاؤں گی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
بیٹھو، تم نے اپنی پلیٹ کیوں نہیں رکھی؟
مجھے بھوک نہیں ہے اور میں نے کھانا بھی بنا لیا ہے۔
ارے بھائی، میں چاہتا تھا تم میرے لائے ہوئے لوبیا پلاؤ کھاؤ، لیکن نہیں کھایا۔ یہ لوبیا پلاؤ میں نے تہران کے بہترین ریسٹورینٹ سے لیا ہے۔ کس نے تمہارے دسترخوان پہ رکھا؟ خدا کے علاوہ کسی نے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک علامت ہے، نہیں ہے کیا؟ اگر یہ چھوٹی سی علامت ہے، لیکن یہی قرضہ، اس کو کیا کہو گی؟ ہم کتنا اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ ہو گیا، مل گیا، بہت اچھا ملا، لیکن تم نے مخالفت کی۔ اس گھر کے بارے میں کیا کہو گے؟ اتنا بڑا گھر، ہم کتنا اس کے پیچھے لگے تھے، لیکن نہیں مل رہا تھا، آخر کار مل گیا۔ یہ ایک اور نشانی ہے، نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ بہارے کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں لوٹا دی ہے، یہ خدا کی نشانی ہے کہ نہیں؟ نیما، ورک شاپ کے لیے کتنی کوششیں کی، نہیں مل رہا تھا، نہیں مل رہا تھا، لیکن آخر کار خدا نے چاہا اور ہو گیا۔ یہ بھی نشانی ہے، یہ سب نشانیاں تو ہیں، لیکن آپ نہیں مانتی ہیں، توجہ نہیں دیتی ہیں۔ طیبہ جان، تمہیں حقائق کو دیکھنا ہوگا، مجھے معلوم ہے تمہارے لیے سخت ہیں، لیکن تمہیں ماننا ہوگا۔ یہ ساری باتیں خدا کو منظور تھیں۔
تمہیں یقین ہے؟ تمہارا موبائل؟
نہیں، آج کل موبائل زیادہ نہیں اٹھاتا۔
ہیلو امیری صاحب، السلام علیکم، میں انسپکٹر شاداب ہوں۔
پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات ہوتی تو فون نہ کرتے، سیدھا ہاتھ کڑی لگا کر لے جاتے۔ تم مطمئن رہو، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔ ہیلو سمانہ،